नमस्कार भारत, तारीख 4 सितंबर दिन मंगलवार, मैं हूं वात्सल्य राय। डॉलर के मुकाबले गोते लगा रहा है रुपया, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पेट्रोल डीजल के दाम, आपकी जेब पर कितना असर?
डीजल का महंगा होना किसान के लिए तकलीफ पैदा करता है। जीडीपी की ग्रोथ जिसको लेके आज हमें खुशी 8.2 है, वो कम होगी।
छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में लॉ यूनिवर्सिटी छात्रों के आंदोलन को कई संगठनों का समर्थन, क्यों खत्म नहीं हो रहा गतिरोध?
जब तक हम सारे इश्यूज को इन डिटेल उनसे डिस्कस नहीं कर लेते हैं और जब तक ये नहीं होगा, ये प्रोटेस्ट यूं ही कंटिन्यू करता रहेगा।
और पाकिस्तान में नया राष्ट्रपति चुनने के लिए आज मतदान।
अपोजिशन डिवाइड हो गई है तो इसलिए अब पीटीआई के कैंडिडेट का चांस बहुत मजबूत है।
बात किसानों की भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुवासिनी से। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे अर्जेंटीना में राष्ट्रपति मारिसिया मैक्री ने देश में पैदा हुए आपातकाल जैसे हालात और मुद्रा पीसो की लगातार गिरती कीमत से मुकाबला करने के लिए कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। मैक्री ने टीवी पर राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि अर्जेंटीना आमदनी से ज्यादा खर्च करने की आदत बरकरार नहीं रख सकता। मैंने मंत्रियों की संख्या घटाकर आधे से भी कम करने का फैसला किया है। सरकारों के सामने अलग अलग तरह का वक्त आता है और अलग लम्हों में अलग टीमों की जरूरत पड़ती है। ये थे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मारिसिया मैक्री के शब्द। हालांकि सरकार ने अभी ये जानकारी नहीं दी है कि किन मंत्रालयों को बंद किया जाएगा या फिर किन मंत्रालयों को आपस में मिला दिया जाएगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की सर्वोच्च अदालत ने विपक्ष के नेता जीन पियरे बेम्बा को दिसंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने से रोक दिया है। बेम्बा पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा चश्मदीदों को रिश्वत देने के मामले में दोषी ठहराया गया था, इसलिए उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया। बेम्बा हाल ही में युद्ध अपराधों के मामले में 10 साल तक हिरासत में रहने के बाद रिहा किए गए थे। उन्हें राष्ट्रपति जोसेफ कबीला का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी माना जा रहा था। जर्मनी के केमिंस शहर में नस्लभेद के विरोध में हुए एक कंसर्ट में हजारों लोगों के शामिल होने की खबर है। कंसर्ट में मौजूद कई लोगों को नाजियों को बाहर करो जैसे नारे लगाते हुए भी सुना गया। कंसर्ट में मौजूद लोगों ने 1 मिनट का मौन रखकर उस शख्स को श्रद्धांजलि दी जिसे पिछले महीने चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सीरिया और इराक मूल के 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कंसर्ट में शामिल होने वाले एक शख्स ने कहा, मुझे लगता है कि राजनीतिक संदेश ये है कि नेता इसकी थोड़ी ही सही परवाह करें कि देश के नागरिक क्या कह रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। नेताओं को लोगों की इच्छा के अनुसार चीज़ों को थोड़ा ही सही बदलना चाहिए ताकि लोग कुछ संतुष्ट हो सकें। कंसर्ट में शामिल होने वाले एक शख्स के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरियाई सरकार समेत ईरान और रूस को चेतावनी दी है कि अगर वो विद्रोहियों के कब्जे वाले इदलिब पर हमला करते हैं तो ये मानवता के प्रति एक गंभीर अपराध होगा। ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि अगर इदलिब पर हमला हुआ तो हजारों मासूम लोग मारे जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र का भी कहना है कि इस तरह के किसी भी हमले का लाखों नागरिकों पर भयानक असर हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केपटाउन के पास हथियार बनाने की एक फैक्ट्री में हुए धमाके में 8 लोगों के मौत की खबर है। बचाव सेवा के प्रवक्ता के मुताबिक अभी धमाके की वजह का पता नहीं चल पाया है। इसराइल की सेना का कहना है कि उसने एक फलस्तीनी नागरिक को गोली मार दी है। सेना का दावा है कि फलस्तीनी शख्स उनके एक चेकपोस्ट पर चाकू लेकर घुसने की कोशिश कर रहा था। सेना के मुताबिक ये घटना सोमवार को हर्बन शहर के पास उसकी एक छावनी में हुई। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में 200 साल पुराने संग्रहालय में रविवार शाम आग लग गई और इससे इसका 90% हिस्सा जलकर खाक हो गया। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं लाइव। नमस्कार भारत में सबसे पहले बात रुपए की। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा है। अमरीकी डॉलर के मुकाबले कल रुपया 21 पैसे टूट गया, यानी अब एक डॉलर 71 रुपए 21 पैसे का हो गया है। रुपए की कमजोरी के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत भी चढ़ रही है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दाम भी तेजी पर हैं। कल दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल का भाव 79 रुपए 15 पैसे और एक लीटर डीजल का भाव 71 रुपए 15 पैसे रहा। हाल में अप्रैल से जून के बीच की तिमाही के आंकड़े सामने आए थे और इसमें भारत की आर्थिक वृद्धि की दर 8.2% रही थी, यानी तस्वीर लुभावनी दिख रही थी। इस बीच रुपए का गिरना और पेट्रोलियम उत्पादों का लगातार महंगे होता जाना क्या संकेत देता है? मैंने ये सवाल किया अर्थशास्त्री आकाश जिंदल से।
रुपया जो गिरा है उसका कारण ये है कि कई इमर्जिंग मार्केट करेंसी डॉलर के मुकाबले बहुत बुरी तरह गिरी हैं। तुर्की की करेंसी देखें, अर्जेंटीना की करेंसी देखें, वो डॉलर के मुकाबले बहुत बुरी तरह गिरी हैं। साथ ही साथ अमेरिका और चाइना की जो ट्रेड वॉर है, इन दोनों फैक्टर्स का मिला के असर ये हुआ है कि भारत जैसी बाकी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज डॉलर के मुकाबले गिरी है। कच्चे तेल के इंटरनेशनल प्राइसेस ने भी रुपए को कुछ हद तक गिराया है। मेरा तो ये मानना है कि 71 तो अभी आया है, हालात ऐसे रहे तो रुपया 73 रुपए प्रति डॉलर तक गिर सकता है। आज जो पेट्रोल के बढ़े हुए दाम है, हाई गूगल प्राइसेस, हाई डॉलर प्राइसेस, दोनों का नतीजा, साथ ही साथ हाई लेवल पे सेंट्रल एक्साइज जो है वो हमारी सरकार चार्ज कर रही है। है क्या कि जब एक समय ऐसा था इसी सरकार के रजीम में, जब 27 डॉलर्स पर बैरल तक, यानी कि इतना कम कच्चे तेल के प्राइस आ गए थे, उस समय सरकार लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती गई, लेकिन अब सरकार वो एक्साइज ड्यूटी सरकार ने कम नहीं किया।
क्या असर आप अर्थव्यवस्था पर देखते हैं दोनों चीजों का? रुपए की कीमत लगातार गिर रही है और पेट्रोल डीजल के दाम लगातार ऊपर जा रहे हैं।
सबसे बड़ा असर महंगाई बढ़ना आम आदमी के लिए, यानी आम गृहिणी के लिए घर का खर्चा बढ़ जाना, डीजल का महंगा होना किसान के लिए तकलीफ पैदा करता है, क्योंकि कमाई आज की तरीके से उस तरीके से नहीं बढ़ रही है। सैलरीज की बात करें, सैलरीज में इंक्रीमेंट बहुत कम रहा है लेकिन खर्चा बढ़ता रहा है। इकोनॉमिक टर्म में बात की जाए, हाई इन्फ्लेशन का मतलब आगे चल के देश के लिए डेफिसिट, यानी सरकारी घाटा ज्यादा होगा। आगे चल के जीडीपी की ग्रोथ, जिसको लेके आज हमें खुशी 8.2 है, वो कम होगी। करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारा बढ़ सकता है, यानी हाई इन्फ्लेशन की वजह से सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, मैक्रो इकोनॉमिक इकोनॉमिक की बात करें, वो तकलीफ में आ सकते हैं।
ये थे अर्थशास्त्री आकाश जिंदल। मुद्रा की गिरती कीमत और आर्थिक चुनौतियों का सामना दुनिया के कई और देश भी कर रहे हैं। इनमें से एक देश है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री ने हालात को पटरी पर लाने के लिए कई कड़े कदमों का ऐलान किया है। टीवी पर देश के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि उनका देश आमदनी से ज्यादा खर्च करने की स्थिति में नहीं है। सरकार का इरादा 19 मंत्रालयों में से आधे को खत्म करने का है। सुधार के तहत खाने के सामान पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म होगी और निर्यात पर कर बढ़ाए जाएंगे। राष्ट्रपति मैक्री ने कहा,
Para cubrir lo que falta durante esta transición que se ha transformado en emergencia.
हालात आपातकाल जैसे हो गए हैं और इस स्थिति में जो लोग सक्षम हैं, हम उनसे ज्यादा योगदान देने के लिए कहेंगे। निर्यात करने वालों का हिस्सा ज्यादा बड़ा होगा। मैं जानता हूं कि कर लगाना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हालात को समझें, हमें आपके समर्थन की जरूरत है। ये थे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के शब्द। हालांकि राष्ट्रपति को ज्यादा समर्थन मिलता नहीं दिख रहा, कई लोग कड़े कदमों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और अगली खबर भारत के महाराष्ट्र से। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल भीमा कोरेगांव मामले में मीडिया को जानकारी देने के लिए महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ कड़ा रुख दिखाया। कोर्ट किस बात से नाखुश था और उसने क्या कहा? मैंने सवाल किया मुंबई में मौजूद बीबीसी मराठी के संवाददाता मयूरेश कोनूर से।
जब से पुणे पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई है, फिर पुणे कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट भी इसमें आ गया और हाउस अरेस्ट पर भेजा गया इन पांच ही अभियुक्तों को। उसके बाद जो है, सतीश गायकवाड़ करके एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्होंने मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और उनका ये कहना है उसमें कि ये जो तफ्तीश पुणे पुलिस कर रही है वो ठीक नहीं है और ये मामला जो है वो एनआईए को, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दिया जाए। तो उसके ऊपर जब आज हियरिंग चल रहा था, उनके लॉयर भी थे उसके साथ, जो पांच अभियुक्त हैं उनकी तरफ से भी एडवोकेट मिहिर देसाई थे और सरकार की तरफ से भी वकील थे। तब इनके लॉयर ने हाईकोर्ट से कहा, शुक्रवार के दिन जो महाराष्ट्र के एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर है परमवीर सिंह, उन्होंने जो पुणे पुलिस के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है इस पूरे केस में, उन्होंने साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने बताया था कि उनके पास पुख्ता सबूत है, सारे लोग जो है वो सीपीआई माओइस्ट से जुड़े हुए हैं, इनका बड़ा नेटवर्क है और एल्गार परिषद सिर्फ एक दिखावा था, उसके पीछे से वो जो बैन ऑर्गेनाइजेशन है माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसका प्रोपोगंडा करने जा रहे थे और इसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को थ्रेट थी और उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाया, क्या एविडेंस उनको मिले हैं। तो इनका कहना था कि जब अभी तक मामला सुप्रीम कोर्ट में शुरू है, अभी आना बाकी है, वहां पे हियरिंग बाकी है, तो फिर पुलिस ने ऐसा क्यों कहा? और फिर हाईकोर्ट ने भी, जस्टिस शिंदे और जस्टिस मतलब भटकर की बेंच थी दोनों की, और उन्होंने कहा कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला सब जुडिस है तो पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं थी और ऐसा पुलिस ने क्यों किया, ऐसे सवाल ऐसी फटकार उन्होंने लगाई।
तो क्या अभी तक इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आपके सामने आई है?
अभी तक तो आधिकारिक तौर पर पुलिस ने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, हालांकि पुलिस के वकील वहां पे थे। अब 7 सितंबर तक ये मामला है जो अध्ययन किया गया है, तो शायद उस वक्त सरकार की तरफ से सरकार वकील जो है वो ये मामला सामने सबके रखेंगे। पहले 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इसकी सुनवाई जो है वो होगी। तब सुप्रीम कोर्ट में भी पुणे पुलिस को अपना पक्ष रखा है कि क्यों उन्हें उनकी रिमांड चाहिए। तो अभी तक जो भी 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में और उसके दूसरे दिन बॉम्बे हाईकोर्ट में ही पुलिस की प्रतिक्रिया है जो हमें जानने के लिए मिल जाएगी।
जानकारी दे रहे थे मयूरेश कोनूर। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में नया रायपुर की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र बीते 7 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों की 14 मांगों को कई संगठनों का समर्थन मिल रहा है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि आंदोलनकारियों की सभी मांगे मानना संभव नहीं है। सुनिए आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
आजादी की मांग करने वाली ये आवाजें पिछले सप्ताह भर से नया रायपुर के हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में गूंज रही हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई और परीक्षा स्थगित है। सैकड़ों की संख्या में छात्र पिछले 7 दिनों से विश्वविद्यालय की सीढ़ियों पर जमे हुए हैं। इन छात्रों की मांग है कि विश्वविद्यालय के कैंपस के भीतर लड़के और लड़कियां 24 घंटे लाइब्रेरी या दूसरी जगहों में बिना रोक टोक आ जा सकें। आंदोलन का नेतृत्व करने वाली जयऋषि कहती हैं,
हम लोगों को कैंपस के अंदर कैद कर दिया जाता है 10:30 बजे के बाद। हम ऐसा नहीं करते तो हमें शो कॉज मिल जाता है, हमारे घरों पे फोन चले जाते हैं और हमारे कैरेक्टर असैसिनेटिंग रिमार्क्स किए जाते हैं कि आपका बच्चा भारी ये करता है, ये करता है, वो करता है।
इस साल 27 अगस्त को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यहाँ के कुलपति की नियुक्ति को गैर कानूनी ठहरा दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने राज्य में विधि विभाग के प्रमुख सचिव आरएस शर्मा को प्रभारी कुलपति बनाया है। पुराने कुलपति को हटाए जाने के बाद से छात्र बेहद खुश हैं, लेकिन उसी दिन से उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स बार एसोसिएशन के प्रचार अधिकारी अच्युत तिवारी का कहना है कि छात्रों की अलग अलग 17 मांगे हैं।
ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन की इनएफिशिएंसी और इनकैपेसिटी टू डू वर्क को लेके हैं, मतलब उन्हें तरीके से आदत ही नहीं है यूनिवर्सिटी चलाने की, चाहे वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल क्यों ना हो।
लेकिन विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति आरएस शर्मा का कहना है कि छात्रों की अधिकांश मांगे मान ली गई हैं, लेकिन वे कुछ मांगों पर अड़े हुए हैं।
17 मांगे थी, 17 में से 14 मांगे ये इनकी उसी समय खाकर इसको पूरा कर, पर उनकी एक ही जिद आज भी है, तब भी है, रात भर लाइब्रेरी खोल के रखो और रात भर कैंपस को ओपन रखो। और यदि कहीं मैं बिना व्यवस्था देखे इसको डिक्लेयर नहीं कर पा रहा हूँ, पॉलिसी मैटर की बात है, इसी तक के जाएगा मैटर जो है वो।
लेकिन 24 घंटे कैंपस को खुला रखने के अतिरिक्त कई छात्राओं ने शिक्षकों पर अश्लील टिप्पणियों और यौन शोषण की भी शिकायत दर्ज कराई है। ऐसी छात्राओं की संख्या 76 है। हमने कुछ छात्राओं से इस बारे में बातचीत की।
हम चाहते हैं कि जिन भी फैकल्टीज के अगेंस्ट में एलिगेशंस है उन लोगों को सस्पेंड किया जाए।
हम कैसे उसी टीचर से पढ़ ले जिसके अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट है, उसकी क्लास में कैसे बैठ जाए? क्या वो सेफ्टी का मुद्दा नहीं है फिर तब?
लेकिन कुलपति का कहना है कि लिखित में शिकायत आएगी तो उन पर जरूर कार्रवाई होगी।
कम से कम विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, नाम लिख करके दे दीजिए।
प्रदर्शन, आश्वासन और शिकायतों के बीच फिलहाल तो मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष स्नेहल रंजन शुक्ला कहते हैं,
हम ये प्रोटेस्ट तब तक कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कोई कॉन्क्रीट डिसीजन उनके तरफ से नहीं आता है, जब तक हम सारे इश्यूज को इन डिटेल उनसे डिस्कस नहीं कर लेते हैं, और जब तक ये नहीं होगा ये प्रोटेस्ट यूं ही कंटिन्यू करता रहेगा।
जाहिर है अभी बात बनने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इस बीच JNU के छात्र नेताओं से लेकर देश के कई राजनीतिक दल प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में सामने आ गए हैं। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
उधर गुजरात में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल बीते 10 दिन से अनशन कर रहे हैं। हार्दिक के समर्थकों का दावा है कि डॉक्टर उन्हें अस्पताल में दाखिल होने के लिए कह रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उनसे संपर्क नहीं किया है। हार्दिक की स्थिति कैसी है और सरकार का उनके आंदोलन को लेकर कैसा रुख है, हमारे साथी मोहम्मद शाहिद ने BBC गुजराती सेवा के संवाददाता रॉक्सी गागडेकर छारा से यही सवाल किया।
वो तीन डिमांड्स लेकर बैठे हैं। पहली उनकी डिमांड है कि पाटीदार समुदाय को रिजर्वेशन कोटा मिलना चाहिए। दूसरी उनकी डिमांड है कि गुजरात में जितने भी किसान हैं उनका जो लोन्स है वो वेव ऑफ होनी चाहिए। और तीसरी हार्दिक पटेल के एक साथीदार है अल्पेश कथीरिया, जो 1.5 साल पहले का एक सेडिशन का केस है उसमें उनका अरेस्ट हुआ है, तो उनको छोड़ने की डिमांड के साथ, ये तीन डिमांड के साथ हार्दिक पटेल यहाँ पर अहमदाबाद में जो SP रिंग रोड है उसके पास में ग्रीनवुड्स बंगलोज में वो अनशन पर बैठे हैं अपने ही मकान के अंदर। डॉक्टर्स का ये कहना है कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने पिछले 9 दिनों से कुछ खाया नहीं है, उनकी किडनी अच्छी नहीं है, बॉडी के अंदर अभी इन्फेक्शन बढ़ रहा है। जो डॉक्टर उनको दिन में 2 बार जांच करते हैं उन डॉक्टर्स का ये कहना है कि उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए।
अभी तक सरकार की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है इस पर?
नहीं, सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया है नहीं, क्योंकि हार्दिक पटेल की तबीयत जरा खराब हो गई। सरकार ने एक ICU ऑन व्हील्स वहां पर रखा गया है। उसके अलावा हार्दिक पटेल के साथ बातचीत के लिए किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट सरकार की तरफ से नहीं है। सीधे तौर पे कांग्रेस ने खुलकर हार्दिक पटेल के इस अनशन का समर्थन किया है। हर रोज कांग्रेस के जो आला नेता है वो, उनके अलावा जो यहाँ के कांग्रेस के जो MLAs हैं वो रेगुलरली हार्दिक पटेल को मिलने के लिए आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता है उनका ये आरोप है कि हार्दिक पटेल के जो अनशन है वो कांग्रेस ने ही सपोर्ट किया है। भारतीय जनता पार्टी के ओर से जो गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है नितिन पटेल, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि हार्दिक पटेल के जो अनशन है उसकी कोई जरूरत नहीं है और गुजरात सरकार ने जो नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी है उनको, उनके लिए ऑलरेडी एक कमीशन बना दिया है।
जानकारी दे रहे थे रॉक्सी गागडेकर छारा। और अब आज के अखबारों की सुर्खियां बताएंगी सिंधु वासनी।
वत्सल्य, आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर जन्माष्टमी की तस्वीरें दिख रही हैं। कहीं राधा कृष्ण के गेटअप में तैयार प्यारे प्यारे बच्चे हैं तो कहीं दही हांडी तक पहुंचने की कोशिश करते लोग। इसके अलावा एक बड़ी खबर जो कई अखबारों के पहले पन्ने पर है वो ये है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट की वजह नोटबंदी नहीं है बल्कि RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और UPA सरकार की नीतियाँ हैं।
जी राजन, जिनकी विदाई के समय कई तरह के विवाद भी हुए थे।
जी इसके अलावा एक खबर इंडियन एक्सप्रेस में है। खबर ये है कि कनाडा में पढ़ने वाली 28 साल की एक युवती को तूतीकोरन एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया और 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने फ्लाइट में BJP सरकार को फांसीवादी बताते हुए नारे लगाए थे और जब उन्होंने ये नारे लगाए तब फ्लाइट में तमिलनाडु के BJP प्रमुख भी मौजूद थे। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस की एक और रिपोर्ट है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है जिसमें सरकार ने यूनिवर्सिटी के नाम से मुस्लिम शब्द को हटाने की बात कही थी।
जी
उन्होंने केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है और कहा है कि यूनिवर्सिटी का पूरा नाम इसके इतिहास और मकसद को दर्शाता है, इसलिए मुस्लिम हटाना निरर्थक होगा।
बहुत शुक्रिया सिंधु वासनी अखबारों की सुर्खियों के लिए। और अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन का कार्यकाल 9 सितंबर को खत्म हो रहा है। नया राष्ट्रपति चुनने के लिए आज चुनाव होना है। चुनाव मैदान में कौन कौन से उम्मीदवार हैं और उनकी क्या उम्मीदें हैं? हमारे साथी मोहम्मद शाहिद ने यह सवाल किया इस्लामाबाद में मौजूद बीबीसी संवाददाता हारून रशीद से।
प्रधानमंत्री की तरह पाकिस्तान में प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो भी 5 साल का होता है, तो हर 5 साल बाद नया सदर है वो उसका चुनाव होता है। तो अब चूंकि 2013 में हुए थे चुनाव और ममनून हुसैन साहब मुंतखब हुए थे, तो अब उनकी जो टेन्योर है वो 9 सितंबर को खत्म हो रही है, तो उनकी जगह नया चुनाव करना है। उसमें पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है वो सेनेट और जो 4 प्रांत की असेंबलियां हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज है, जो जहां पर कोई 706 वोट बनते हैं टोटल, जिनमें से जो उम्मीदवार कैंडिडेट 354 वोट ले लेगा तो वो मुंतखब करार पाएगा। इसमें अभी तक जो 3 उम्मीदवार हैं वो सामने आए हैं। एक तो जो रूलिंग पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की, उनके कैंडिडेट हैं आरिफ अलवी, कराची से उनका ताल्लुक है और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं क्योंकि पीटीआई की काफ़ी सपोर्ट है, तो फेवरेट भी वही है और लगता है कि चूंकि अपोजिशन डिवाइड हुई है और उन्होंने 2 कैंडिडेट अलग अलग खड़े किए हैं, एक पीपल्स पार्टी ने एतजाज़ अहसन साहब को और दूसरा मुस्लिम लीग नवाज और एमएमए ने मिलके मौलाना फजलुर रहमान को खड़ा किया है। लेकिन अगर इकट्ठे खड़े होते तो शायद कोई चैलेंज दे सकते, लेकिन चूंकि अपोजिशन डिवाइड हो गई है तो इसलिए अब पीटीआई के कैंडिडेट का चांस बहुत मजबूत है।
अगर राजनीतिक प्रणाली की बात की जाए पाकिस्तान की, तो उसमें राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है?
देखें, हेड ऑफ स्टेट होते हैं, सेरेमोनियल ही रह गए हैं। पाकिस्तान में जो 18वीं आईनी तरमीम आई थी उसके बाद इख्तियारात तो उनके पास कोई नहीं है, लेकिन हेड ऑफ स्टेट हैं, चंद सेरेमोनियल चीजें हैं वो जो करते हैं, लेकिन उनका इख्तियार कोई ज्यादा नहीं है। इससे पहले प्रेसिडेंट के पास एक चीज थी जो काफी इम्पोर्टेंट होती थी, वो थी ट्राइबल एरिया, जो अफगानिस्तान के साथ सीमा में इलाका है, तो उसको वो डायरेक्टली डील किया करते थे। लेकिन जब से ट्राइबल एरियाज भी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में जम हो गए हैं, मर्ज कर दिए गए हैं, तो उसके बाद अब वो भी प्रेसिडेंट के पास नहीं रहा।
जानकारी दे रहे थे हारून रशीद। और अब बात किसानों की। हरित क्रांति के दौरान पंजाब की गिनती सबसे आगे के राज्यों में होती थी, लेकिन आज तस्वीर बदल गई है। पंजाब में अब हर 8 घंटे में कर्ज के बोझ तले दबा एक किसान आत्महत्या कर लेता है, उसके बाद परिवार के सामने लग जाता है मुसीबतों का पहाड़। बीबीसी संवाददाता प्रियंका दुबे एक खास सीरीज में किसानों की खुदकुशी और खेती से जुड़े अनछुए पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं। सुनिए सीरीज की पहली रिपोर्ट।
खुदकुशियां दे राहे तुरगे प्यो ते पुत कुड़े, पुत जिन्ना दे मर गए गब्बरू अन्निया हो गया मामा।
उम्र के 50वें पड़ाव पर अकेली खड़ी बलदेव कौर अक्सर अपने पति, जवान बेटे और भाई की मौत का मर्सिया पढ़ती हैं। कर्ज और बदहाली की जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए तीनों ने खुदकुशी कर ली थी। मनसा जिले के भमेकला गांव में धान रोपते खेती और मजदूरों के बीच खड़ी बलदेव कौर ने पड़ोसियों से अपने दिल का हाल कहते कहते अपनों की मौत पर गीत बना लिए। ये गीत अब स्थानीय किसानों के प्रदर्शनों में जनगीत की तरह गाए जाते हैं।
तेरी आई मैं क्यों ना मर जावा वे वीरा।
बलदेव कौर पंजाब की उन हजारों महिलाओं में शामिल हैं जिनके परिवार के किसी न किसी सदस्य ने खेती में हो रहे नुकसान और कर्ज की वजह से खुदकुशी कर ली। दक्षिण पंजाब के बरनाला, मनसा और संगरूर जिलों के तमाम गांवों में कर्ज, बदहाली और खुदकुशी की कहानियां बिखरी पड़ी हैं। स्लेटी रंग की मैली सलवार कमीज पहने हरपाल कौर अपने घर के आंगन में भैंसों को सानी पानी दे रही हैं। बरनाला जिले के भुटाना गांव में यह एक उदास शाम है। हरपाल की जिंदगी की तरह ही उनकी घर की दीवारें भी बदरंग हैं। बीती तीन पीढ़ियों के दौरान हरपाल के परिवार के चार लोग आत्महत्या कर चुके हैं, पति के दादा, चाचा, फिर हरपाल कौर के ससुर और इस साल की शुरुआत में उनके पति ने भी अपनी जान दे दी।
पहला जी साडे घर च साडा दाद सौरा सीगा जी, उन्हें आपदा शोषण कीता।
हमारे घर में ऐसा होता रहा है, खुदकुशी से कुछ दिन पहले सबका व्यवहार बदल जाता है। आत्महत्या से पहले मेरे पति भी कर्जे के चलते टेंशन में रहते और रोते रहते थे। अब मुझे अपने बच्चों की शादियां करने में दिक्कत हो रही है, कोई हमारे यहाँ रिश्ता नहीं करना चाहता। सब कहते हैं कि यहाँ तो मौतों का सिलसिला है, पड़ोसियों को लगता है कि हमारे घर में कुछ जादू टोना किया हुआ है। अपने रिश्तेदार तक घर नहीं आते, अब सिर्फ घर में औरतें ही बची हैं। बिना आदमी के पंजाब के इस गाँव में जीना हमारे लिए बहुत मुश्किल है।
हरे भरे खेतों और खलिहानों के लिए मशहूर पंजाब में अब परिवार ध्वस्त हो गए हैं। किसी गांव में लोग रिश्ता करने नहीं आते तो कई महिलाएं घर छोड़कर जा चुकी हैं। कई गांव में घर के मर्द खेती किसानी के साथ साथ बच्चों को भी संभालते हैं। बरनाला जिले के बद्रा गांव में पिछले 15 सालों से अपने बड़े भाई के दो बच्चों को अकेले बड़ा कर रहे 45 साल के गुरतेज दास एक धूल भरे घर में रहते हैं। गुरतेज के परिवार में कोई महिला नहीं है। बड़े भाई ने कर्ज की वजह से कीटनाशक दवा पीकर खुदकुशी कर ली। परिवार गरीबी के दलदल में धस गया और किसान की बजाय एक खेतीहर मजदूर परिवार में बदल गया। भाई की मौत के बाद उनकी पत्नी से गुरतेज की शादी करवा दी गई थी, पर पत्नी भी अचानक एक दिन उन्हें और बच्चों को छोड़कर चली गई।
जब बच्चों की माँ गई तब छोटा वाला तो सिर्फ 6 साल का था। रात में कभी भी उठकर रोने लगता तो मैं भी उठता और जो कुछ होता उसे बनाकर खिला देता। बीच बीच में बच्चों को कभी बुखार हो जाता तो कभी कोई दूसरी बीमारी। उनको पालना और खेती एक साथ करना मुश्किल था, इसलिए मैंने खेती छोड़ दी और मजदूरी करने लगा। अपनी शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा प्यार बंट जाएगा।
खुशहाली का प्रतीक पंजाब आखिर इस मुकाम पर कैसे पहुँचा जहाँ घरों में मौत की उदासी छाई रहती है? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुखपाल सिंह पिछले कई वर्षों से पंजाब के किसानों के हालात का अध्ययन कर रहे हैं। वे कहते हैं कॉरपोरेट कंपनियों ने खेती के औजार और बीजों को किसान की पहुंच से बाहर कर दिया है।
जो प्रॉफिटेबिलिटी है फार्मिंग सेक्टर से जो शुद्ध इनकम होना है फार्मर को, वो कम हो रही है ईयर बाई ईयर। बिकॉज इनपुट कॉस्ट एंड आउटपुट कॉस्ट है जो हमारी जो है ये एग्रीकल्चर के पक्ष में नहीं है, इसीलिए फार्म प्रॉफिटेबिलिटी है जो कम हो रही है। जो जैसे खेती के इनपुट्स हैं, खाद है, पेस्टिसाइड है, इरीगेशन का स्ट्रक्चर है, तेल है, डीजल है, मशीनरी है जैसे ट्रैक्टर है, ट्यूबवेल है, सब मशीनरी, इसके दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए इन कंपेरिजन टू जो किसान की फसल है उसका रेट इनपुट से ज्यादा बढ़े हैं।
बढ़ती आत्महत्याओं के अध्ययन के लिए बनी अलग अलग सरकारी कमेटियों ने अपनी सिफारिशें तो दे दी हैं, पर उन पर ठोस कार्यवाही होना अभी बाकी है। किसानों की बढ़ती आत्महत्याएं इस बात की पुष्टि करती है कि किसान बाजार के यथार्थ का सामना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन किसानों की खुदकुशी के बाद शुरू होने वाली इन परिवारों की लंबी तनावपूर्ण और अकेली लड़ाइयों पर समाज के साथ साथ सरकार की नजर भी नहीं जाती, जबकि अवसाद के बारूद पर बैठे ये परिवार हर पल एक नई त्रासदी के कगार पर खड़े रहते हैं। पंजाब के मनसा बरनाला जिलों से प्रियंका दुबे, BBC।
प्रियंका दुबे की रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें। और अब चलते चलते मुख्य समाचार सिंधु वासनी से।
BBC समाचार। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे अर्जेंटीना में राष्ट्रपति मारिसिया मैक्री ने देश में पैदा हुए आपातकाल जैसे हालात और मुद्रा पीसों की लगातार गिरती कीमत से मुकाबला करने के लिए मंत्रियों की संख्या घटाकर आधे से भी कम करने का फैसला कर लिया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की सर्वोच्च अदालत ने विपक्ष के नेता जीन पियरे बेम्बा के 10 दिसंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी है। जर्मनी के केमिन्स शहर में नस्ल भेद के विरोध में हुए एक कंसर्ट में हजारों लोगों के शामिल होने की खबर है। कंसर्ट में मौजूद कई लोगों को नाजियों को बाहर करो जैसे नारे लगाते हुए सुना गया। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे देवाशीष कुमार। आपसे अगली मुलाकात दिन भर में शाम के वक्त 7:30 बजे होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।